प्राचीन पौराणिक कथाएं कुछ लोगों को ऐसी काल्पनिक कहानियां लग सकती हैं जो किसी वीर नायक के साहसिक कार्यों की मनगढ़ंत गाथाएं हैं, लेकिन 50 के दशक के विवादास्पद लेखक इमैनुअल वेल्कोवस्की के विचार इससे अलग हैं। उन्होंने ये पाया कि विश्व भर की पौराणिक गाथाओं में मूलभूत समानता है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि विश्व की सभ्यताओं के लिए ये लगभग असंभव है कि वे संयोगवश बार बार एक ही कथानक दोहराएं। दुर्भाग्य से बौद्धिक लोगों ने हमारे पूर्वजों के इन संदेशों को व्यर्थ की तर्कहीन कल्पनाएं कहकर प्रायः अनदेखा कर दिया है। लेकिन मनोविश्लेषक थियोडोर रीक कहते हैं, पौराणिक गाथा किसी काल्पनिक अतीत की कहानी नहीं है, वरन अतीत की स्मृति को काल्पनिक गाथा की तरह कहा गया है। ये इतिहास की तरह कही गई कहानी नहीं है, वरन कहानी की तरह कहा गया इतिहास है। इतिहासकार रिचर्ड हाइनबर्ग हमारे पुरखों के उथल पुथल भरे युद्धकाल जैसे अतीत पर शोध कार्य कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी खोज आगे बढ़ी, उन्हें और पुरानी पुरानी पौराणिक गाथाएं मिली। वे गाथाएं हमारे हिंसापूर्ण इतिहास से पूर्व के उस सुनहरे युग की थीं, जब मनुष्य देवतुल्य और सज्जन थे। हमारी धरा विपुलताओं से भरा उपवन थी। हाइनबर्ग ने यह पाया कि स्वर्ग संबंधी गाथाएं हर जगह मिलती हैं, लेकिन वैज्ञानिक उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे उनके विकास के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हैं। हाइनबर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि या तो ये पौराणिक कहानियां गलत हैं या फिर आधुनिक सिद्धांत गलत हैं। विकासवादियों के विकास के सिद्धांत के विषय में आपस में मतभेद होने के कारण और उनके सिद्धांत का आधार न होने के कारण हाइनबर्ग ने इस बात को मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया कि प्राचीन लोग जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। अधिकांश मानव विज्ञान वेत्ताओं ने स्वर्ग को हमारे इतिहास का हिस्सा मानने से इनकार किया है, क्योंकि उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ ही कलात्मक वस्तुएं मिली हैं। लेकिन हम उन लोगों से कलात्मक वस्तुओं की प्राप्ति की आशा कैसे करते जिन्होंने कोई चिन्ह या रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है। उदाहरण के लिए पुराने समय के आदर्श पुरुष के विषय में बात करते हुए क्वेंट से कहते हैं, आदर्श गुणवत्ता के युग में उनके लिए बुद्धिमत्ता कोई बड़ी बात नहीं थी। वे न्यायनिष्ठ और नेक थे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि ऐसा होना सही या न्याय संगत होना है। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और नहीं जानते थे कि ऐसा करना हितैषिता है। वे ईमानदार थे, निष्ठावान थे, जबकि वे नहीं जानते थे कि ऐसा करना निष्ठा कहलाती है। वे अपने वचन निभाते थे और जानते नहीं थे कि ऐसा करना अच्छी साख कहलाता है। अपने सामान्य कार्यों में भी उन्होंने एक दूसरे की सेवाओं का उपयोग किया और ये नहीं सोचा कि ऐसा करके वे एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने न तो अपने कार्यों के कोई चिन्ह छोड़े और न ही उनके क्रियाकलापों के कोई रिकॉर्ड मिलते हैं। प्राचीन लोग सही थे इस बात को मानने का एक कारण शायद एंट्रोपी का सिद्धांत भी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि केवल थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत ही धारिता का ऐसा भौतिक नियम है जिसकी मूल धारणाओं की व्यावहारिकता को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकेगा। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है कि ऊर्जा का कभी भी निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता है, और दूसरा नियम एंट्रोपी का है, वो ये कि जब कुछ घटित होता है तो उच्च स्तर की ऊर्जा निम्न स्तर की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इससे ये अर्थ निकलेगा कि हम चेतना ऊर्जा वाले प्राणी भी उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित हो जाने चाहिए। मानव विज्ञान वेत्ता जेरेमी रिफिकिन ने कहा, ये सचमुच विचित्र है कि आधुनिक जगत में हम विश्व इतिहास को एक आदर्श स्थिति से होकर अपकर्ष और अस्त व्यस्तता की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए तैयार हैं, और फिर भी इस धारणा से चिपके रहना चाहते हैं कि सांसारिक इतिहास ठीक इसके विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है। वो ये कि अस्त व्यस्तता की स्थिति से उत्तरोत्तर अधिक व्यवस्थित अवस्था की ओर बढ़ रहा है। पिछली 2 शताब्दियों में हुए नाटकीय प्रौद्योगिक विकास को प्रायः उन्नति की अवधारणा के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। हम सहज ही ये विश्वास करते हैं कि सभ्यता हाल ही में हुआ विकास है जो अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रमाण है। फिर भी अनेक उपकरणों से घिरे होने के बावजूद समय समय पर हम ये स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं कि व्यक्तिगत संतुष्टि के मूलभूत विषयों प्रसन्नता व अपने पर्यावरण के साथ तादात्म्यता जैसी बातों में हम मानव प्राणी उससे कुछ ही बेहतर हैं जैसे कि हम शताब्दियों पहले थे। रोचक बात यह है कि संसार के पौराणिक आख्यान स्वर्ग काल को इतिहास के प्रारंभ में रखते हैं, अंत में नहीं। हम प्रायः ये भूल जाते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेष विकासवादी व्याख्या का प्रतिरोध करते हैं, और ये कि प्राचीन लोगों ने प्रायः एक मत से ये घोषणा की है कि उनके आद्यकालीन पूर्वज उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। हमारे ग्रह के जीव जगत में आज के मानव प्राणी बेजोड़ हैं। मनुष्य के सिवा अन्य कोई जीव व्यर्थ की क्रूरता में आनंद नहीं लेता है, और अन्य कोई जीव मानव जैसी आत्मघाती प्रवृत्ति भी नहीं दर्शाता है, जो अब न केवल हमारी अपनी जाति के वरन इस ग्रह के समस्त प्राणियों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। मनुष्य के क्रियाकलाप प्राकृतिक नहीं बल्कि गंभीर रूप से अप्राकृतिक दिखाई देते हैं, जो मौसमों में व्यवधान डाल रहे हैं, नदियों और वनों का विनाश कर रहे हैं, वनस्पतियों और पशुओं की प्रजातियां विलुप्त कर रहे हैं, वायु जल और भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। इसकी तुलना में अन्य जीव परस्पर सहयोगी सूक्ष्मता से संतुलित प्राकृतिक व्यवस्था में एक दूसरे के जीवन को बढ़ावा और सहारा देते हुए रह रहे हैं। हालांकि मनुष्य जाति वस्तुतः महान सौंदर्य का निर्माण करने और उच्च चरित्र को प्रदर्शित करने में सक्षम है, लेकिन सच्चाई यही है कि साफ तौर पर केवल मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण हमारा ग्रह आज पारिस्थितिकी या आणविक विनाश के कगार पर खड़ा है। शायद ये तथ्य कि हमारे समय में हमारी जाति की पौराणिक स्मृतियों का अध्येताओं ने गहराई से विश्लेषण किया, लेकिन ये कहकर उन्हें अधिकांशतः अस्वीकृत कर दिया कि उनमें कोई सार नहीं है, ये दर्शाता है कि हम याद करना नहीं चाहते। फिर भी जिस कगार पर हम खड़े हैं उसको देखते हुए बुद्धिमानी इसी में दिखाई देती है कि क्षण भर के लिए वैज्ञानिक या दूसरे लोग पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर दें और एक बार फिर शाश्वत काल रूपी दर्पण में देखें और विचार करें कि आज हम क्या हैं और हम क्या थे। सर्वाधिक प्राचीन लिखित सामग्री जो बच पाई है वो हमें सुमेरियन सभ्यता से मिली है। ये सभ्यता जहां फली फूली वो क्षेत्र अब इराक कहलाता है। सुमेरिया के लोगों ने डिलमन नामक एक स्थान के विषय में कहा है कि वो मानव जाति का आद्य स्वर्गिक निवास स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु, रोग और दुख अज्ञात थे। कुछ समय बाद के बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया के ग्रंथ कहते हैं कि पहला मनुष्य अडापा अपार बुद्धिमत्ता का स्वामी था। उसका बुद्धिमत्ता का स्तर दिव्य था। मिस्रवासियों ने भी यह विश्वास किया है कि संसार के प्रारंभ में संपूर्णता का काल था। दिव्यों ने सूर्य की रचना की। उनके समय में व्यवस्था स्थापित थी और उनके काल में सत्य स्वर्ग से उतरा। उसने धरतीवासियों से अपने को जोड़ा। इसी प्रकार प्राचीन ईरान में यीमा के राज्य की स्मृति है, जो वास्तविक विश्व सम्राट था, जिसने उस युग में राज्य किया जब न सर्दी थी न गर्मी, न वृद्धावस्था थी न मृत्यु न बीमारी। लोकगीतकार हरमन बॉमन ने अफ्रीका के प्रारंभिक काल से संबंधित पौराणिक गाथा का सारांश करते हुए लिखा, उस समय मानव मृत्यु के विषय में कुछ नहीं जानते थे। वे पशुओं की बोली समझते थे और उनके साथ शांतिपूर्वक रहते थे। उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। विपुल खाद्य सामग्री उन्हें सहज प्राप्य थी। जेनेसिस के पहले दो अध्यायों में प्राचीन हिब्रू लोगों ने भी स्वर्ग की पौराणिक गाथा को सुरक्षित रखा है। ईश्वर ने एडिन के पूर्व की ओर एक बाग लगाया और वहां इंसान को रखा जिसे उसने बनाया था। धरती पर श्री भगवान ने ऐसे वृक्ष उगाए जो देखने में मनोहारी और भोजन के लिए अच्छे थे। उस प्रथम युग के विषय में जो क्रोनोस का स्वर्ण युग था, प्राचीन ग्रीस में हेसियड ने लिखा, वे हृदय के दुख से रहित, कठिनाइयों और पीड़ा से दूर और मुक्त देवताओं की तरह जिए। उन्हें दयनीय अवस्था ने नहीं घेरा। जब वे मृत्यु को प्राप्त होते थे तो ऐसे जैसे कि निद्रा मग्न हो, और उनके पास सब अच्छी चीजें थीं, क्योंकि फलदायी धरती ने स्वतः दिल खोल कर और प्रचुरता से फल दिए। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार पहले युग में कोई रोग नहीं थे और आयु का क्षरण नहीं होता था। उस समय न घृणा थी, न दुख, न भय। इस काल में स्त्री पुरुष तब तक जीवित रहते थे जब तक कि वो जीना चाहते थे और उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। यहूदी धर्म गैन एडिन के अनुसार वहां एक बागीचा है जो 800 प्रकार के गुलाबों और मेहंदी से सुगंधित है। उसमें चार फव्वारे हैं, एक दूध का, एक मदिरा का, एक शहद का और एक सुगंधित द्रव्य का। जहां बौद्ध धर्म निर्वाण को आत्मा की एक अवस्था बताता है, वहीं लामावादी बौद्ध प्रशांति और प्राचीन विवेक के स्थल के रूप में शंभाला नगर की बात करते हैं, जिसे संभवतः संसार के उत्तर में पाया जा सकता है। धर्म ग्रंथ, पौराणिक गाथाएं और धर्म हमारे लिए दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक तो मनुष्य को प्रारंभिक आदर्श काल की याद दिलाते हैं, दूसरे ऐसी विधियां सुझाते हैं जिनके द्वारा कुछ उसी तरह के अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हमें यह भी याद दिलाया है कि कैसे हम अपनी मौलिक शुचिता और निर्दोषिता से पतित हो गए हैं और कैसे हम संशयी और युद्ध करने वाले हो गए हैं। ये सब विश्व भर के अनगिनत पौराणिक आख्यानों में सन्निहित है। उदाहरण तो बहुत हैं, पर यहां थोड़े से ही पर्याप्त रहेंगे। प्राचीन काल के चीनी लोगों ने यह माना कि उनसे पहले के प्राणी दीर्घकाय थे। मनुष्य हमसे दुगने लंबे थे जिन्होंने कभी आनंदपूर्ण युग में वास किया, परंतु नैतिकता के नियमों के अनुसार न जीने के कारण उन्होंने उसे गंवा दिया। ईसाइयों का विश्वास है कि आदम और ईव स्वर्ग से इसलिए निष्कासित कर दिए गए क्योंकि उन्होंने वर्जित फल खा लिया था, अर्थात उनकी चेतना आत्मा से विमुख होकर शरीर पर केंद्रित हो गई थी। लुप्त स्वर्ग के विषय में ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं। एक लोकगीतकार रिचर्ड एंड्री ने विश्व के हर भाग से ऐसे 88 विभिन्न वृत्तांत एकत्रित किए हैं। कुछ बातों में बाइबल की कैन और एबेल की कहानी से मिलते जुलते मिस्र के एक आख्यान के अनुसार भगवान सेत अपने भाई ऑसिरिस को, जो पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र है, मार देता है और इस प्रकार स्वर्ण युग का अंत कर देता है। नेपाल से प्राप्त एक वृतांत के अनुसार किसी समय स्वर्ग के निवासी पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक बार उनके मन में पृथ्वी के फल खाने की इच्छा जागृत हुई। एक बार पृथ्वी लोक का फल चख लेने के पश्चात स्वर्ग लोक में वापस लौटने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई। अफ्रीका के मसाई लोग बताते हैं कि किस प्रकार पहला मानव स्वर्ग से नीचे आया जबकि उसकी पत्नी पृथ्वी से प्रकट हुई। उनके लिए किसी वृक्ष विशेष का फल खाने की मनाही थी, परंतु स्त्री को एक सर्प ने ऐसा करने के लिए लालायित किया। दंड स्वरूप उसे और उसके पति को स्वर्ग से निकाल दिया गया। चाहे जो भी कारण रहा हो, मानव जाति के मन मस्तिष्क अपने अस्तित्व के स्रोत से विलग हो गए। परिणाम स्वरूप लज्जा, भय और लालच ने घेर लिया। मनुष्यों ने पूजा करना प्रारंभ कर दिया और पृथ्वी, जो कि पहले मानव की विशुद्ध चेतना को प्रतिबिंबित करती थी, उसमें परिवर्तन होने लगे। पहले सूक्ष्म रूप से और फिर विनाशकारी विश्व प्रलय के रूप में, जिसने पर्वतों को ऊंचा उठा दिया और महाद्वीपों को जल प्लावित कर दिया। कुछ कलात्मक अवशेषों के अतिरिक्त उस तथा कथित आनंद धाम की केवल स्मृतियां ही शेष हैं। अनेक भविष्यवाणियां ये दावा करती हैं कि अंततः 21वीं शताब्दी के आरंभ में हम अपने को ऐसी विकट स्थिति में पाएंगे जिसका हल या तो पूर्ण विनाश है या फिर सामूहिक कायाकल्प। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत की एक कहानी हिरोशिमा जैसी ही किसी घटना का वर्णन करती है। संपूर्ण विश्व की शक्ति से आवेशित एक पक्षपास्त्र शहरों की ओर फेंका गया। आग और धुएं का एक ताप दीप्त स्तंभ जो 10,000 सूर्यों के प्रकाश के समान चमकीला था, अपनी संपूर्ण चमक के साथ आकाश में उठा। ये एक अज्ञात शस्त्र था, एक लौह वज्र था, मृत्यु का भीमकाय दूत था, जिसने वृष्णिज और अंधकों की संपूर्ण जाति को भाग कर दिया। उसमें प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप और अग्नि की स्मृतियां हैं जिन्होंने पुराने संसार को नए में परिवर्तित कर दिया। वस्तुतः सभी संस्कृतियां एक ऐसे समय की भविष्यवाणियां करती हैं जब आध्यात्मिक निद्रा या विस्मृति की स्थिति में मानव जाति का उन्माद और अदूरदर्शिता परिस्थितियों को अथाह गर्त में पहुंचा देंगे। तब अंतिम निर्णय लेना ही ऐसे काल के सभी वर्णन आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। उदाहरण के लिए होपी इंडियन लोगों की भविष्यवाणी, अश्वहीन रथ पथ पर काले सर्पों के साथ दौड़ रहे हैं और तंतु जाल फैले हैं जिनके माध्यम से लोग लंबी दूरी पर बात कर सकते हैं। होपी लोगों का विश्वास है कि आने वाले कुछ दशकों में मानव जाति या तो स्वयं को समाप्त कर डालेगी या फिर एक नए आध्यात्मिक युग में प्रवेश करेगी। वे युद्धों, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं को शुद्धिकरण की ओर बढ़ते चरण के रूप में देखते हैं। तिब्बती कहते हैं कि हम अब अंधकार युग की समाप्ति के काल में रह रहे हैं। भूमंडलीय आपदाएं और राजनैतिक विवाद महान शुद्धिकरण, आध्यात्मिकता और प्रकाश के नए युग का सूत्रपात करेंगे। पैगंबर इसे ने कहा, अंतिम काल में ईश्वर के निवास स्थान वाला पर्वत पर्वतों के शिखर पर स्थापित होगा और सारे राष्ट्र उसकी ओर उमड़ पड़ेंगे। वो राष्ट्रों का फैसला करेगा और अनेक लोगों की निंदा करेगा। वे अपनी तलवारों को हलों की फालों से टकराएंगे और अपने भालों को कतरनियों से। राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें नहीं उठाएंगे, ना ही वे अब और युद्ध के बारे में जानेंगे। जैसे जीवन की चक्रीय गति होती है, उदाहरण के लिए ऊर्जा में, ग्रहों में, आकाश गंगाओं में, प्रकृति में, मौसमों में, रात और दिन आदि में, ऐसा लगता है कि इसी प्रकार की बातें प्राचीन स्मृतियों में भी कही गई हैं। स्वर्ग से नरक में पतन और तब ईश्वर आते हैं और एक बार फिर हमें नरक से मुक्त कराते हैं। पुराण और धार्मिक साहित्य में हमें लगातार निद्रावस्था और जागृति के, विस्मृति और स्मृति के, बंदीकरण और स्वतंत्रता के उदाहरण मिलते हैं। सभी हमारी सच्ची पहचान के खोने और पुनः प्राप्त होने की बात को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हम सदा से करते चले आ रहे हैं। प्लेटो ने कहा, मानव जाति का अनेक बार विनाश हुआ है और आगे भी अनेक बार होगा। उसने मिस्र के पुजारी का उदाहरण दिया जिसने अपने पुरखे सोलोन से कहा, जब ये सभ्यता विनष्ट हो जाएगी तब तुम्हें इसे बच्चों के रूप में सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। अरस्तु ने कहा, आप फिर मेरे सामने बैठेंगे और मैं इस छड़ी को थामे हुए आपसे बात कर रहा होऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अब कर रहे हैं। नोर्स पौराणिक गाथा के अनुसार एल्डर एडा में एक भविष्यवाणी है, जब सूर्य काला पड़ जाएगा और धरती सागर में समा जाएगी तब एक बार फिर से नया स्वर्ग होगा और अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण नई धरा होगी। प्रकाशन ग्रंथ यानी न्यू टेस्टमेंट में भी जॉन ने कहा, मैंने एक नए स्वर्ग और एक नई धरा के दर्शन किए क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी समाप्त हो गए थे। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों चक्रीय पथ या गति का वर्णन करते हैं। सत्य से असत्य, और फिर सतयुग की ओर। चक्रीय काल का संभावित चिन्ह बहुत सी जातियों में समान है, वो है जीवन वृक्ष। वृक्ष का तना एकात्मता, चक्र के प्रथम अर्ध भाग में रहने वाली शांति और एकता को दर्शाता है और शाखाएं विभाजन और अशांति को प्रस्तुत करती हैं, अर्थात अपने स्रोत से, अपने अस्तित्व के सत्व से दूर। जब जीवन वृक्ष अपनी पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, तब शांति या शक्ति के स्रोत का विश्व वृक्ष के बीज को रोपने के लिए आगमन होता है। जब ईश्वर आत्माओं को उनके दुख से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित होते हैं, वो समय वृक्ष के शिखर पर एक चिन्ह के रूप में निरंतर दर्शाया जाता रहा है। क्या यह संभव है कि अब 21वीं शताब्दी में हम अपने को एक पुराने विश्व वृक्ष के अंतिम छोर पर खड़ा पाएंगे? मानव की बनावटी पहचान तब बनी जब मनुष्य की चेतना का पतन अपने अंतिम विनाश के आखिरी मध्योत्सव के लिए उद्यत हो गया। इसी बीच सच्ची और ईश्वरी पहचान के पास एक अभूतपूर्व अवसर है अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, बशर्ते कि मनुष्यों के दिल और दिमाग इसको ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तैयार हों। रेवलेशंस की किताब में लिखा है, देखो ईश्वर का निवास मनुष्यों के साथ है, वो उनके साथ रहेगा और वो उसकी प्रजा होंगे, भगवान स्वयं उनके साथ होगा और उनका ईश होगा, ईश्वर स्वयं उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा, फिर मृत्यु नहीं होगी, न दुख होगा, न रुदन ही और न ही दर्द, क्योंकि पुरानी चीजें समाप्त हो जाएंगी। वो जो अपने सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देखो मैं सब चीजें नई बना देता हूं। अभिलिखित समय के आरंभ से हमने स्वर्ग की खोज की है, भावी स्वर्ण युग अब बहुत समीप आ गया है। देव पिता शिव के अनुसार इस स्वर्ण युग में लोगों के मध्य हर आदान प्रदान प्रेम होगा, सब जगह प्रचुरता होगी, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं होगी, किसी की भी कुछ उपलब्ध करने की चाहत नहीं होगी, लेकिन सब उपलब्धियों की ये अभिलाषा रहेगी कि उनके स्वामियों को सब कुछ प्राप्त हो। पुराने संसार की सभी सर्वोत्तम वस्तुएं अपने पवित्रतम और श्रेष्ठतम रूप में, ऐसे रूप में जिसमें वे अधिकतम आनंद प्रदान कर सकें, नए काल में रहेंगी। सर्वत्र सब निधियों की खाने भरी होंगी, प्रत्येक कोष अपनी तरह से हर प्रसन्नता प्रदान करने के लिए तैयार होगा। भौतिक पदार्थ तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे और समय तथा प्रकृति तुम्हारे मित्र होंगे, हर वस्तु तुम्हें प्रसन्नता देगी, दुख का कोई नाम तक नहीं होगा। तुम चाहे तो मुझे भगवान कहो, यहोवा, अल्लाह या फिर शिव कहो। तुमने गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद और मेरी मूर्तियां बनाई, तुमने मेरे नाम पर युद्ध किए और मेरे लिए बलिदान किए। तुम कहते हो कि मैं प्रकृति में हूं या आकाश में हूं, तुम कहते हो कि मैं सर्वत्र हूं। जब तुम कष्ट में होते हो तो सहायता के लिए मुझे पुकारते हो, और जब तुम सुखी होते हो तो मुझे भूल जाते हो। तुमने मेरी मनुष्य रूप में पूजा की, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। पैगंबरों और गुरुओं ने मुझे पाने का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कोई मुझे नहीं खोज सका। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं ही हूं जिसके साथ तुम सारे रिश्ते रख सकते हो। मैं अजन्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं प्रकाश हूं। मेरा आकार एक अदृश्य बिंदु है, तुम भी प्रकाश का एक सूक्ष्म बिंदु हो। मेरा संसार मौन और शांति का संसार है, उस स्वर्णिम मौन में तुम मेरे साथ निवास करते थे। फिर तुम्हारा शरीर रूप में जन्म हुआ और तुमने अपनी कहानी रचनी शुरू कर दी। तुम अपने घर को और मुझे भूल गए। मैं फिर आ गया हूं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम कौन हो। मैं फिर आ गया हूं तुम्हारे लिए समय के रहस्यों को खोलने के लिए। मैं फिर आ गया हूं तुम्हें संपूर्ण प्रेम, शक्ति और शांति से पूर्ण करने के लिए, जिनसे तुम इतने समय से वंचित रहे। याद रखें, याद रखें।